गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास अधिगौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कान वृंदावन में कार्तिक के दामोदर महीने में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ऊर्जेश्वरी राधा, कार्तिक व्रत को कहते हैं ऊर्जा व्रत। ऊर्जा का मतलब होता है शक्ति, ऊर्जा, और ऊर्जेश्वरी है राधा रानी। स राधा ऊर्जेश्वरी, ऊर्जेश्वरी राधा के साथ दामोदर का दाम उदर। वैसे हम पूजा करते हैं तो यशोदा दामोदर की करते हैं, क्योंकि ये नाम श्री कृष्ण को दामोदर, ये यश श्री कृष्ण को यशोदा ने दिया। यशोदा ने कृष्ण को दाम का मतलब रस्सी, उदर का मतलब पेट के ऊपर बांध दिया। लेकिन राधा दामोदर के नाम से भी भगवान बहुत प्रतिष्ठित है। भगवान को राधा दामोदर भी बोलते हैं। राधा जैसे यशोदा ने कैसे बांधा था, रस्सी से बांधा था, भक्ति से, रस्सी से नहीं, किससे, भक्ति बधाओ, भक्ति से बांधा था। और भक्ति में होता है प्रेम, और राधा रानी ने भी प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को बांधा, तो राधा दामोदर भी कहते हैं। हरि भक्ति विलास जो सनातन गोस्वामी पाद और गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के प्रेरणा से वैष्णवों के लिए कानूनी किताब है, उसके अंदर एक पूरा अध्याय कार्तिक व्रत के ऊपर है। और श्री रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु में भी भक्ति के 64 अंगों में कार्तिक व्रत की महिमा है। तो कार्तिक व्रत की महिमा के अंतर्गत सत्यव्रत मुनि के द्वारा पद्म पुराण में 8 श्लोकों से भगवान दामोदर की प्रार्थना की गई है। तो वो ये दामोदर अष्टक हम गाते हैं अपने मंदिर के संचालकों ने आज से दामोदर अष्टक के एक एक श्लोक के ऊपर रोज सत्संग का प्रेरणा सूत्र से आरंभ किया है। तो आज हम पहले श्लोक का श्रवण वर्णन करेंगे। दामोदर, जब दामोदर लीला हुई तो भगवान की आयु कितनी थी, डेढ़ से ज्यादा है। दामोदर लीला श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद के नवें अध्याय में है, नवें अध्याय में ये लीला है। इस लीला के बाद की लीला है नल कुबेर और मणिग्रीव का उद्धार, वो इस लीला का ही एक दूसरा भाग है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद गोपों ने मीटिंग की कि अब हमारे को गोकुल छोड़ना है। और गोकुल में भगवान कब तक रहे, 3 साल 4 महीने। भगवान की बाल लीलाएं वात्सल्य रस की रसीली लीलाएं गोकुल में 3 साल 4 महीने तक हुए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब 3 साल 4 महीने के होते हैं तो वो 5 साल के लगते हैं। उनका जो जो स्वरूप है वो उस वक्त 5 साल का लगता है, ऐसे आचार्यों ने कहा है। तो ये लीला 2.5 साल के बाद की लीला है, 3 साल ऐसे कुछ मानना चाहिए। तो ये लीला कौन सी लीला हो गई, कौन से रस की लीला है, वात्सल्य रस की लीला है। वात्सल्य रस के भक्त और माधुर्य रस के भक्त भगवान के मुख के ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्र करते, कहां भगवान के, जबकि दास्य भक्तों का भगवान का चरण ध्यान का लक्ष्य होता है। दास्य भक्त चरणों का ध्यान करते हैं, वात्सल्य और माधुर्य के भक्त भगवान के मुख का चिंतन करते हैं। तो इस दामोदर अष्टक में मुख के ऊपर ज्यादा, इदम ते मुखम, मुख का नाम है तो भगवान के सुंदर मुख का नाम है। तो आइए पहले श्लोक का पाठ करते हैं और इसके ऊपर श्रीपाद सनातन गोस्वामी पाद ने टीका लिखी है दिग्दर्शनी। दिग का मतलब दिशा, दर्शनी का मतलब दिखाना कि इसके अंदर क्या रहस्य है, उसका भागवत से श्लोकों का उल्लेख करके सनातन गोस्वामी ने इसके ऊपर टीका लिखी है। तो उसी टीका का पाठ करते हुए आज हम पहले श्लोक का पाठ करते हैं, ठीक है। श्लोक तो ये सबने सुना है, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। लसत कुंडलम गोकुल भ्राजमानम यशोदा भियो लोकलाद धावमानम परामृष्टम अत्यंत दुर्त्य गोप्या। वैष्णव का मत है कि भगवान का नाम रूप ललित लीला और धाम, नाम रूप लीला और धाम ये भगवान को प्राप्त करने का साधन है। और इस श्लोक में ये सब चीजें हैं, भगवान का स्वरूप भी है, रूप भी है, रूप है, स्वरूप है, लीला है और धाम भी है। तो इसमें पहला शब्द क्या है, नमामि का मतलब नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और फिर शब्द है ईश्वरम, शब्द के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इसके 3 अर्थ हैं। पहला अर्थ महिमामय है, भगवान की महिमा गाई गई है। कैसे हैं भगवान ईश्वर का अर्थ, पहला क्या है, सर्वशक्तिमान। ईश्वर का मतलब सर्वशक्तिमान, ये भगवान की महिमा है। दूसरा अर्थ है प्रार्थनात्मिक, वंदनात्मिक, भगवान को वंदना की गई है। वो है जगत एक नाथम, आप भगवान जगत के एक नाथ हैं। तो ये 2 पहले अर्थ हैं, महिमा परक अर्थ और प्रार्थना परक अर्थ, वंदना परक। तीसरा अर्थ है निज प्रभु, ईश्वर का मतलब मेरे अपने स्वामी, ये है भक्ति परक अर्थ। आप मेरे स्वामी हो। और इसको सनातन गोस्वामी कहते हैं, बात कहते हैं कि यह मंगलाचरण है दामोदर अष्टक का। मंगलाचरण दामोदर अष्टक का नमामि ईश्वरम। भाई मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कि हमारा काम निर्विघ्न पूरा हो। लेकिन वैष्णव, और इसमें मंगल का मतलब है शुभ, तो वैष्णव के सारे काम अपने आप में शुभ है, उनके लिए कुछ मंगल और करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी परंपरा का सम्मान रखते हुए मंगलाचरण किया जाता है। तो मंगलाचरण में ईश्वर कैसा है? ईश्वर नमामि ईश्वरम में सर्वशक्तिमान जगत के एक नाथ और मेरे निज स्वामी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। तो स्वामी कैसा है आपका? सच्चिदानंद रूपम। ये क्या हुआ? भगवान का रूप। वैसे इसको कहा है, सनातन गोस्वामी कहते हैं ये स्वरूप लक्षण है भगवान का। दो लक्षण होते हैं, स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण मतलब भगवान है ही सच्चिदानंद। जैसे हमने ब्रह्मा संहिता में सदा ये श्लोक पढ़ते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, और यहां सच्चिदानंद रूपम है, तो रूप और विग्रह दोनों एक ही बात है। सत का मतलब है सदा एक जैसा रहे, सदा, न उसका आद हो न अंत हो। तो कैसे है सत्य, कैसा रूप है श्री कृष्ण का? गोपाल रूप, क्योंकि इसके तीसरे श्लोक में आएगा गोपाल बालम। तो गोप वेशधारी कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्णस्तु स्वयं भगवान, इसका श्री चैतन्य महाप्रभु चार विशेषण दे रहे हैं सत्य के अंतर्गत। पहला है नित्य किशोर, सदा ही 16 साल से नीचे की उम्र में ही रहते, किशोर अवस्था में रहते हैं, इससे बड़े कभी नहीं होते। नित्य किशोर नटवर, ये भगवान का रूप कैसा है? नृत्य करते हुए चलते, कभी भी ब्रज में दो पांव एक समय धरती पे नहीं लगते कृष्ण के, वो नृत्य करते हुए चलते हैं। वैसे नटराज तो भगवान शंकर को कहते हैं, नृत्य करने वालों के राजा। लेकिन जिस नृत्य करने वाले राजा शंकर ने जिसका वरण किया, वरण किया का मतलब जिसको अपना स्वामी स्वीकार किया, गोपी बनकर गोपेश्वर के रूप में जो रह रहे हैं शंकर जी, तो कृष्ण है नटवर, शंकर है नटराज, कृष्ण है नटवर। राज क्वा भी वरण करने योग्य है, वरण वर कहते हैं पति को। वैसे तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का सत्य की परिभाषा क्या है? नित्य किशोर नटवर गोप वेशधर। भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण हमेशा गोप का वेश धारण करते हैं, सर के ऊपर पगड़ी है और मोर का पंख लगा हुआ है, पीला पीतांबर है, हाथ में गैया चलाने की लाठी है। ये गोप वेश, इस वेश में भगवान श्री कृष्ण माधवेंद्रपुरी को दर्शन देने के लिए आए। जब दूध का लोटा लेकर गोविंद कुंड पे आए तो इस रूप में आए, ये भगवान का गोप रूप है। और चौथा विशेषण श्री चैतन्य महाप्रभु देते हैं, वेणु कर, हाथ में वेणु है। ये भगवान श्री कृष्ण का रूप वृंदावन में केवल ऐसा दिखता है, न मथुरा में दिखता है न द्वारका में दिखता है, कृष्ण तो एक ही है। लेकिन ये रूप जो है ये वृंदावन में, और इसलिए सत्यव्रत मुनि कहता है कि भक्ति हमको दो, लेकिन दो वृंदावन में। इधर दो। तो सत्य भगवान की परिभाषा, सदा नित्य किशोर रहते हैं, नटवर रहते हैं, गोप वेशधर रहते हैं और वेणु कर। और चित्त की परिभाषा क्या है? सभी उनको सब जानते, सब सब कुछ जानते हैं, ज्ञान के भंडार हैं। वैसे सामान्य रूप से कृष्ण के चित्त का परिभाषा करें तो उनकी भगवत गीता उनके ज्ञान का ऐसा अनुपम विश्व को प्रसाद है जो सबको भगवत धाम ले जाने में अपने आप में परिपूर्ण है। सब शास्त्रों में जो है उसके अंदर है, जो कहीं नहीं है उसके अंदर है। ये भगवान की ज्ञान की अभिव्यक्ति इस संसार के अंदर हुई है। और आनंद कृष्ण के आनंद की अभिव्यक्ति रासलीला में होती है। जहां रस का विहार होता है वहां आनंद की अभिव्यक्ति होती है। तो ये सच्चिद आनंद रूपम, रूप का विग्रह का मतलब है ये भगवान का नित्य स्वरूप है। इसको कहते हैं स्वरूप लक्षण। नमामि ईश्वरम सच्चिद आनंद रूपम। जब रूप कहा सच्चिद आनंद है तो उस रूप का केवल एक उल्लेख कर रहे हैं और उस उल्लेख में सारे और रूप के अंगों का वर्णन समझ लेना चाहिए। वो रूप का क्या वर्णन कर रहे हैं अभी स्वरूप लक्षण के बाद, लसत कुंडलम। वैसे लसत का मतलब है चमकना, जो चीज चमकती हो। और भगवान के कानों में कुंडल होते हैं प्रायः मकर आकार, मकर के आकार के कुंडल। तो इसी कुंडल को ही उल्लेख किया है, और भी किसी चीज का किया जा सकता था। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कुंडल का इतना सौभाग्य है कि भगवान के गालों को जब ये झूमता है तो चूमता है। भगवान के गालों को जब ये कुंडल चूमता है तो झूमता है, इससे ज्यादा और किसी का सौभाग्य क्या हो सकता है। और इस कुंडल की क्यों कुंडल चमक रहा है, क्या कुंडल बहुत अच्छे धातु का बना हुआ है? सनातन गोस्वामी कहते नहीं, कृष्ण का गाल इतना चिकना चमकीला है कि कुंडल उसके कारण चमक रहा है। और तब वो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद से गोपी गीत गोपियों के रास पंजो अध्याय के पहले श्लोक का 40वां पहला श्लोक 29वें अध्याय का 40वां श्लोक उद्धृत करते हैं और तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का तीसरा या चौथा श्लोक उल्लेख करते हैं, जो उद्धव कहते हैं भूषण भूषणम, आपका अंग ऐसा है आभूषणों को भी आभूषणों का भूषण बन जाता है। ये सारे आभूषण आपके अंग के ऊपर आते हैं तो उनका शोभा बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि हम तो कुछ पहनते हैं तो हम अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आभूषण कृष्ण पहनते हैं तो आभूषण अच्छे हो जाते हैं। कृष्ण को उससे अच्छा होने की जरूरत नहीं। तो ये दो श्लोकों का उल्लेख किया है, आप चाहें तो इन दो श्लोकों को देख भी लें। पहला श्लोक जिसको उद्धृत किया है दशम स्कंद का 29वें अध्याय का 40वां श्लोक है, गोपियां कह रही। चलो एक श्लोक आगे बढ़ते हैं। तो लसत कुंडलम, भगवान के कुंडलों का ध्यान किया जाता है। अब भगवान के धाम का वर्णन कर रहे हैं, गोकुले भ्राजमानम। ऐसा रूप कहां दिखेगा आपको गोकुल में? तो गोकुल की परिभाषा क्या करते हैं, गोकुल किसको कहते हैं? गो गोपी गोप अलंकृत। ये भगवान श्री कृष्ण जब देवी को आदेश देते हैं कि तुम बलराम जी को देवकी के उदर से रोहिणी के उदर में ले जाओ और मेरी छोटी बहन कर बन के गोकुल में, तो वहां गोकुल की परिभाषा बताते हैं। गोकुल वो है जहां गाय है, गोप हैं, गोपियां हैं। और गोकुल की दूसरी परिभाषा यह है जहां भगवान को ध्यान में नहीं देखा जाए। गो का दूसरा अर्थ है इंद्रियां। अपनी इंद्रियों से भगवान का आंखों से पिया जाए, कानों से मंद मधुर उनकी वाणी को बांसुरी को सुना जाए, तो अपनी सारी इंद्रियों से भगवान का चिंतन ध्यान रसास्वादन किया जाए, वो है गोकुल। यहां कोई ध्यान नहीं करता है, भगवान का ध्यान नहीं करते, साक्षात भगवान को देखते हैं तो ध्यान क्या करेंगे। इसी दामोदर लीला में लिखा है कि जहां योगियों को ध्यान करने से लेके बड़े ध्यान में बैठने के बाद 5 मिनट भी ध्यान में नहीं आता है, उसको इस गोपी ने जाके पकड़ लिया। और गोपी की क्या परिभाषा है, क्योंकि इसमें गोपी शब्द दामोदर अष्टक में आया है, मूस चुंबितम गोपिया, है ना, गोपी है ना शब्द, क्या इसमें ही है गोपिया। तो गोपी का अर्थ क्या है, एक तो गोपी का अर्थ है इंद्रियों से जो कृष्ण का पान करे, दूसरा गाय का पालन करे, और तीसरा एक अर्थ बड़ा अद्भुत लिखा है इसमें, बार बार गोपी क्यों कह रहे हैं यशोदा को, पहले यशोदा कह देते फिर गोपी कहते हैं क्यों, कि श्री कृष्ण को गोपनीय रखे, छुपा के रखे। भाई कृष्ण आखिर मथुरा से गोकुल गए ही क्यों थे, कृष्ण का मथुरा से गोकुल जाने का मतलब था कंस से छुप के रखना ना, कि पता ना लगे कि कौन है कृष्ण। तो गोपियों ने ऐसी ऐसी लीला कृष्ण के साथ की कि कंस कहता है जिसको गोपी बांध देती है चलूबर छाछ के ऊपर नचा लेती है वो मेरा क्या बिगाड़ेगा। यानी कृष्ण को इतना गोपनीय रख दिया गोपियों ने, इतना अपने वश में कर लिया कि उसकी प्रभुता तो कृष्ण को ही भूल गई। तो गोपनीय जो रखे कृष्ण को, वैसे गोपनीय रखने का मतलब अपने हृदय में, हृदय में समा, सबसे चीजें गोपनीय कहां रखते हैं, दिल में, और वैसे कहे मन में जिसके, इसलिए गोपियों में अपने मन में अपने हृदय में जब ये श्लोक पढ़ते हैं भगवत गीता का मन मना, तो इसका उदाहरण सिर्फ गोपियां हैं जिन्होंने मन कृष्ण को दे दिया। भाई कृष्ण को मन किसने दे दिया, मन मना का मतलब है जिसने अपने मन कृष्ण को दे दिया हो, या कृष्ण के मन की जो जानता हो। ये गोपियां और ग्वाल कहते तो कृष्ण तुम्हारे मन में क्या है हम जानते हैं, और बड़े बड़े ऋषि कहते हैं हम भगवान को जानते नहीं है, और ये कहते हैं हम जानते हैं। तो ये गोपी की परिभाषा है। और ब्राजमानम का क्या अर्थ है, गोकुल प्रकाशित हो रहा है, बहुत चमक रहा है, चमक रहा है गोकुल। ब्राजमानम का मतलब है जैसे कुंडल चमक रहे हैं ऐसे गोकुल चमक रहा है। वैसे भी गोकुल वैकुंठ से तो महान है ही, लेकिन यहां जब कृष्ण आए तो ये लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया। लक्ष्मी यहां एक एक इंच के ऊपर अपनी क्रीड़ा कर रही है। तो गोकुल क्यों इतना आनंदमय है, इसमें भगवान के पार्षदों का वर्णन है कि भगवान के पार्षद, भगवान के शुद्ध भक्तगण। तो पहले अपन गोपियों का जो ब्राजमानम की परिभाषा है उसको देखते हैं। हरे कृष्णा। कृष्ण कितना सुंदर है, लसत कुंडलम कितना सुंदर है, ये गोपियां क्या कहती हैं उसकी सुंदरकाता को देखकर। का स्त्री अंगते कल पाद्यत वेणु गीता, कौन सी स्त्री ऐसी होगी जो आपका जब आप चरण उठाते हैं नटवर और वेणु बजाते हैं समाहित आर्य चरितम, वो अपना आर्य चरित्र, वो अपना जो एक स्त्री का गहना होता है, स्त्री का गहना क्या है, लज्जा, उसको त्याग देती है। चले तो त्रिलोक्यम, कि हम स्त्रियां करें कौन सी बात है, तीनों लोक के सारे लोग आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। त्रिलोक के सौभगम इदम च निरीक्ष रूपम, आपका ये रूप ऐसा है, इसको देखने के बाद तीनों लोक आकर्षित हो जाते हैं, अकन चक्कन हो जाते हैं, उनको सब कुछ भूल जाता है। बोला केवल लोक में स्त्रियां? बोला नहीं नहीं, यद गो द्वेज दुर्म मृगा पुलकानि अभिभ्रम। बोला गोपियों की क्या बात, गोपियां कहते हमारी क्या बात करें, आपके रूप को देख के गायां, वैसे द्वेज कहते हैं पक्षी को, द्वेज तीन चीजों को कहते हैं, द्वेज का मतलब दो जन्म, एक तो ब्राह्मण को द्वेज कहते हैं क्योंकि उसके दो जन्म हो गए माता पिता से और गुरु से, दूसरा द्वेज कहते हैं दांतों को, जो पहले दूध के दांत आते हैं फिर दूसरे आते हैं, इसलिए दांत को भी द्वेज कहते हैं, और पक्षी को भी द्वेज कहते हैं क्योंकि पहले अंडे में होता है फिर उसका दूसरा जन्म होता है। तो गाय द्वेज, दुर्म, दुर्म का मतलब घास पेड़, मृगा और हिरणी आदि, पुलकाल वो भी पुलकित हो जाती है आपका रूप देखकर। कितना आपका रूप लुभाना है, हमको कभी ऐसे कृष्ण के रूप ने आकर्षित किया, ये गोपियों की दृष्टि है। वो कहती है हमसे ज्यादा तो इनका सौभाग्य है क्योंकि इनको तो जंगल में आपका रूप को देखने में कोई बाधा नहीं पड़ती है, वो तो ऐसे बैठ के घंटा भर देख नहीं सकती है। हम तो देखने के लिए एक आंख तो हमारे निंदकों के ऊपर रखती है कि हमारे निंदक हमको देखे ना, और दूसरी आधी आंख से परिवार वालों को देखते हैं, कहीं वो आधी आंख से कृष्ण को देखते हैं, उसके ऊपर भी ब्रह्मा जी पलक आपने बना दी, तुमको आंख बनाना नहीं आया। तो ये भाव है कि इतना कृष्ण मधुर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। वो नंद बाबा के खंभे में जो स्पिकिट जो जो रतन का खंभा था उसमें अपने रूप को देख कर ऐसे कहते हैं, मैं अगर राधा होती तो इसी के साथ विवाह करती, इसी को अपना लेती, अपने को देख के उसमें उसको इतना अपने रूप का। तो इसको कहते हैं रूप माधुरी। ये रूप माधुरी कृष्ण की विशेष है, ये और कहीं नहीं है, इतना आकर्षक रूप। यही श्री कृष्ण गोपियों के सामने रास में से जब अदृश्य हो गया तो चतुर्भुज रूप में सामने खड़ा हो गया, तो गोपियों ने प्रणाम किया, कहा हे भगवान विष्णु वैकुंठ नाथ, आपने कृष्ण को कहीं देखा? तो ये सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताते हैं। जब जगन्नाथपुरी जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के पट बंद होते हैं स्नान यात्रा के बाद, तो महाप्रभु कहां रहते हैं? अलानाथ में। भगवान का क्या रूप है? चतुर्भुज विष्णु का रूप है। तो क्या चेतन महाप्रभु को चतुर्भुज विष्णु रूप के रूप में कौन सी आकर्षण है, क्यों जाएंगे वह? कृष्ण राधा भाव में, चेतन महाप्रभु राधा भाव में है ना, तो राधा भाव में चेतन महाप्रभु अलानाथ में कैसे आनंद लेंगे? वो अलानाथ का चतुर्भुज रूप है, वो श्री कृष्ण गोपियों को स्वयं चार भुजाओं में खड़े होकर दर्शन दिया था, वो रूप है, वो कृष्ण ही है जो गोपियों की रास लीला से जब अदृश्य हो गए थे तो वही इस रूप में खड़े हो गए थे। तो इसलिए महाप्रभु को उस रूप में उतनी ही आसक्ति है क्योंकि वो कृष्ण ही है, नहीं तो विष्णु रूप में सबको सम्मान देना चाहिए, वहां जाने के लिए उसके पीछे रहस्य ये है। अब दूसरा आभूषण, भूषण भूषणम का दूसरे तीसरा स्कंद, दूसरा अध्याय, चौथा श्लोक शायद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, बारहवा श्लोक है, तीसरे अध्याय तीसरा इसको स्कंद, दूसरा अध्याय बारह श्लोक, बारहवें श्लोक में उद्धव जी कहते हैं पर भूषण भूषणा नाम, आप इतने सुंदर है कि आभूषण भी आपके शरीर के ऊपर आकर सुंदर बन जाते हैं। श्री कृष्ण के ये दो श्लोकों को उद्धृत करते हैं और फिर गोकुले भ्राजमानम, भ्राजमानम के भाव को गोपियां इसी रास अध्याय के 32वें अध्याय में इसके भ्राजमानम की परिभाषा करती हुई कहती हैं, दस बत्तीस चौदह, ये तो रोज पढ़ते हैं आप, कौन सा है? गोपियां क्या कहती हैं? भगवान चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? सूरत सूरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ट चुंबितम इधर राग विस्मा अर्णम निर्णाम वितर वीर नस्ते अद्धा अमृतम। कहां चमक रहे थे कृष्ण? ये जो गोकुल ब्राजमान में, अब सनातन गोस्वामी कहते हैं एक बार तो रासलीला से भगवान अदृश्य हो गए, फिर उनने के ढूंढने के ऊपर जब उनको मिल गए तो जमुना के पुलीन पे गोपियों ने अपनी चुनरियों का आसन बनाया। कैसे, क्या, किसका आसन बनाया? भगवान को किसके ऊपर बिठाया? अपने चुनरियों के। और चुनरियां कैसी थी? और रोते रोते आंसू भी पहुंचे थे, नाक भी पहुंचा था, क्योंकि रोई तो बहुत थी ना गोपियां। वो चुनरियां सब रखी और भगवान उसके ऊपर बैठ गए और फिर गोपियां चारों ओर से उसको घेर के बैठ गई। ये ब्राजमान में गोकुल में कैसे वो चमक रहे है सब गोपियों के बीच में, इतना वो चुनरियों के ऊपर जो बैठ जो बिठा दिया है उसको, ये जिसको रतन सिंहासन के ऊपर बिठा के पूजा जाता है वो गोपियों के चुनरियों के ऊपर कितने। तो यहां ब्राजमानम का अर्थ है अपने निज पार्षदों, अपने निज प्रेमियों के संग में भगवान जब बैठते हैं तो वहां ऐसा अद्भुत प्रकाश होता है, इतना अद्भुत आनंद। दूसरा ऐसे ब्राजमानम का उदाहरण देना है तो कब दें? अघासुर लीला के समय श्री कृष्ण बीच में बैठे अपना भोजन का खाने के लिए और सखा 8 फिर 16 फिर 24 फिर 32 छोटे आगे पीछे बैठे तो उनके बीच में, और सब देख रहे हैं कि कृष्ण हमें हमारी ओर देख रहा है। सबको ऐसे लग रहा है कि कृष्ण हमारी ओर देख रहा है और सभी ऐसे समझ रहे हैं कि कृष्ण हमारा प्रसाद खा रहा है। और इतना कृष्ण चमक रहा था उनके ऊपर के चार मुख वाला ब्रह्मा हंस के ऊपर बैठ के ऐसे देखता है। यज्ञ में बड़ी पवित्रता से इसको बुला के कहते हैं कुछ खाओ, तब तो दिखाई नहीं देता है, ये जूठन ग्वाल बालों की खा रहा है, क्या कौन है ये? ये ब्रह्मा भ्रमित हो गया। ये लीला में भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे को सबने माखन चोर के नाम से बहुत प्रसिद्ध कर दिया है ब्रज में, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम। तो लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं। अगर ब्रह्मा जी को मैंने चोर बना दिया जो वेदों का ज्ञाता है, चार चार माथे हैं, अगर वो चोर बन गया तो लोग मुझे तो चोर फिर कहे कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा है चोरी की है। तो ऐसा मैं काम करने जाऊं कि ब्रह्मा चोर, और चोर भी बछड़ों का चोर, बछड़े चुरा के चला गया। तो ऐसा चोर बनाया, बछड़ों का चोर, ग्वाल बालों का चोर, अपहरण करके उठा के पशु ले गया कि आए बच्चे भी ले गया। तो भगवान ने ऐसा लीला अद्भुत की कि कई देवता आश्चर्यचकित हो गए, समझ में नहीं आ रहा है उनको। अब ब्रह्मा को नहीं समझ में आ रहा है तो और किसको समझ में आ रहा है? तो ब्राजमानम की परिभाषा यह है कि भगवान जैसे ब्रज में आए हैं तो ब्रज अति चमक रही है। ये भगवान की भक्तों के संग में कैसी लीलाएं करते हैं? इति दृग लूला भी आनंद कुंड, ऐसी लीलाएं क्रम सघोषम में करते हैं, केवल गोकुल में करते हैं, वृंदावन में करते हैं, और कहीं नहीं करते हैं ये लीलाएं। इसके बाद अब क्या है, रूप हो गया, स्वरूप लक्षण हो गया, भगवान के रूप में लसत कुंडल हो गया, भगवान के धाम गोकुल हो गया, गोकुले विराजमानम हो गया, फिर उनके तटस्थ लक्षण में उसके सारे पार्षद आदि जिनके संग में वो लीला करते हैं वो आ गया। अब एक लीला का उनको सुमरण आ रहा है, किसको सुमरण आ रहा है, सत्यव्रत मुनि को। तो अब डेढ़ लाइन में उस लीला का वर्णन करते हैं, यशोदा भियो लोखला दधाव मानम। यशोदा भी का मतलब भय, यशोदा के भय से, यशोदा के भय से। ये लीला कौन से दिन हुई थी, दीपावली के दिन, दीपावली के दिन ये लीला गोकुल में हुई थी। और वहां दामोदर बंदर, अभी हम जाते हैं तो वो एक स्थान दिखाते हैं जहां दामोदर लीला हुई थी, तो दामोदर बंदन लीला का स्थान गोकुल में नंद बाबा के, असल में कृष्ण भाग के बाहर चला गया तो उधर ही जाके बांध दिया। तो है असल में ये सब नंद बाबा की गौशाला है, वो पूरा एरिया सारा नंद बाबा का है। भी और इस दिन कुंती महारानी ऐसे लगता है कि गोकुल में आई हुई थी, आना चाहिए ना, कुंती गोकुल में आ सकती है कि नहीं, आ सकती है, क्यों आ सकती है, भगवान की भुआ है। हाँ, एक दृष्टि से भगवान की भुआ है, ठीक है, और भी कोई कारण है उसके आने का, भाई भगवान की भुआ कौन से भगवान की, वसुदेव कृष्ण की, ये तो नंदनंदन कृष्ण है। देवमीर राज नाम का राजा चंद्रवंश में हुआ, यदुवंश के परंपरा में। उसकी दो पत्नियां थी, एक वैश्य पत्नी और एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय पत्नी। क्षत्रिय पत्नी से हुए सूरसेन महाराज, वैश्य पत्नी से हुए पर्जन्य। पर्जन्य के पांच पुत्र हुए, उसमें बीच में नंद, उपनंद, सुनंद, नंदन और सूरसेन को पुत्र हुआ वसुदेव। तो वसुदेव भी, नंद भी, ये दोनों कुंती के साथ संबंध हो गया ना, कि दोनों हैं तो भाई। सो कुंती आई हुई थी, ये पूज्य पाद श्री राधा गोविंद महाराज इसका उल्लेख करके कहते हैं कि उन्होंने अपनी प्रार्थना में कहा है कि कृष्ण भय जिससे स्वयं भयभीत होता है, वो उस गोपी के भय से उस वक्त रो रहे थे। ये कुंती महारानी की प्रार्थना का श्लोक है, कौन सा श्लोक है, गोपिया कुंती महारानी की प्रार्थना, कुंती भय जिससे भयभीत होता है वो इस गोपी के भय से भाग रहा था, गोपी के भय से भाग रहा था। यशोदा भी उलूखलाद, उखल के ऊपर से कूदा और फिर यशोदा भी उलूखलाद धाव मानम, भागा। परामृष्टम, परा मतलब पीछे से, परामृष्टम पीछे से पकड़ लिया, पीछे से जाके पकड़ लिया। अत्यंत दुर्त्य गोपेया, अत्यंत दुर्त्य मतलब बहुत तेज दौड़ी। और ये चार पांच श्लोक दसम स्कंद के नवे अध्याय का यहां उल्लेख किया है इस लीला का वर्णन। तो ये लीला तो सबने बार बार सुनी हुई है, पहले श्लोक से तो अभी नहीं कहने का समय। एकदा यशोदा अग्रदासीशो, एक समय की बात है। एकदा का अर्थ क्या हो गया, एक समय की बात है, इसका मतलब रोज रोज ये लीलाएं नहीं होती। ये यशोदा का मटका एक बार फूटा, फिर न पहले ऐसी लीला हुई न बाद में ऐसी लीला हुई, इसके लिए इसको एकदा कहते हैं कि ये बहुत रेयर है। बहुत ऐसी लीलाएं बार बार देखने को, लीला कहीं कब सुखदेव गोस्वामी ने इसके लिए पूछा नहीं परीक्षित महाराज ने। इससे पहले अध्याय में, इससे जो पहले अध्याय आता है उसमें मिट्टी खाने के लिए भगवान ने मृदु भक्षण लीला है। भगवान ने क्या खाया? मिट्टी खाई। कहां खाई? ब्रह्मांड घाट में। शिकायत किसने लगाई? ग्वाल बालू ने और बलराम जी सबने। तो यशोदा लाठी घर से लेकर सीधी ब्रह्मांड घाट चली। शिकायत तो पहले गोपियां भी आती थी, मक्खन चोरी की देती थी, लेकिन यशोदा कहती है मक्खन अपने घर का खाए या बाहर का खाए, मोटा ही होगा, क्या फर्क है, इसमें कोई हानि तो है नहीं। लेकिन मिट्टी खाया तो उसको लगा के कुछ इसके हानि ना हो जाए, तो मैया ने जाके क्या बोला, खाई मिट्टी? नहीं, मैंने नहीं खाई। झूठ बोलते हैं क्या भगवान? नहीं, 12 शब्दों का बड़ा अच्छा अर्थ है। अरे ये सब ग्वाल बाल बोलते हैं, बोला आज झगड़ा करके गए हैं मुझसे। बोला कोई बात नहीं, तुम्हारा भाई बलराम बोलता है। बोला अरे मैया तू उसको समझती है, अच्छा है वो, बाहर का देखने का गोरा है, अंदर का बिल्कुल काला है। तो क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? अरे भाई बलराम कृष्ण का ही ध्यान करता है, तो अंदर में कृष्ण है, कृष्ण तो काला ही है ना, तो अंदर का काला है। अरे मैया ये मुझे बोलता है कि यशोदा गोरी नंद गोरा, तू काला किराए का लाए है कि पैसों का लाए है, तुम तो मोल के लाए है, ये तो मुझे रोज चढ़ाता है, ये बहुत अंदर का काला है। पर यशोदा कहती मुंह खोलो, मुंह में ब्रह्मांड देखती है। फिर भगवान ने कहा कि ऐसे नहीं भगवान, मेरे को ये माता भगवान समझ के पूजा करे, मेरे को तो बाल लीला करनी है, तो भगवान ने छुपा दी लीला, तो दूध पीने लगा। तो वो परीक्षित महाराज कहते इतना क्या सौभाग्य इस यशोदा का, नंद का, कि इसका स्तनपान कर रहे हैं भगवान। तो उत्तर क्या दिया सुखदेव महाराज ने, कहा धरा और द्रोण नाम के वसु ब्रह्मा जी की प्रार्थना किया कि हमको बाल लीलाओं का रस आस्वादन करने दो। तो ये द्रोण और फिर स्वयं सुखदेव महाराज ने कहा मैंने बोल तो दिया, लेकिन यशोदा और नंद द्रोण और धरा तो नहीं है, ये तो भगवान के नित्य माता पिता वात्सल्य रस की मूर्ति मान स्वरूप है। तो उनने ये दामोदर लीला स्वतः अपने आप बोलना शुरू की, और इस लीला के अंत में क्या कहते हैं, ले भेरी गोपी, जो इस गोपी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है वो न ब्रह्मा को हुआ, न शंकर को हुआ, न लक्ष्मी को हुआ। तो जो सुख ब्रह्मा स्वयं को नहीं मिला, वो ब्रह्मा के आशीर्वाद से ध्रुव और धर्म को कहां से मिलेगा? ये सिद्धांत स्थापित करना है। क्या ब्रह्मा कभी खड़े होकर कहेंगे कृष्ण को खड़े हो जाओ तेरे को उखल से बांधूंगा? ब्रह्मा ये कर सकते हैं? शंकर जी कर सकते हैं? लक्ष्मी कर सकते? नहीं कर सकती। ये गोपी को यह सौभाग्य मिला है। इसका अर्थ यह है कि नंद और यशोदा नित्य भगवान के पार्षद हैं, माता पिता है गोलोक में। द्रोण और धरा उनके शरीर में प्रवेश करके भगवान के बाल लीलाओं का रस आस्वादन कर रहे थे। तो दो दो व्यक्ति हो गए एक समय, उनके शरीर में उनको प्रवेश करके ये लीला का रस आस्वादन कर रहे। द्रोण और ब्रह्मा जी स्वयं को जो सुख नहीं है, जो यशोदा को है, यशोदा बहुत बड़ी बात है असल में। तो ये परामृष्टम इसके ऊपर श्लोक जो उद्धृत की, तो बात कथा उसको आगे कर रहे थे, यशोदा दही का मंथन कर रही थी, उसमें विशेष बात क्या थी? चरितानी बाल चरितानी गायंती, केवल काम नहीं कर रही थी, शरीर से काम कर रही थी, मन से कृष्ण को आज मेरे हाथ का मक्खन खिलाऊंगी, देखूं कैसे जाता है किसी घर में खाने के लिए। ये मन से कृष्ण की पौष्टिक पोषण करने का सोच रही थी, और वाणी से कृष्ण की लीला गा रही थी। इसी को तो कहते हैं भक्ति। भक्ति में क्या है? मन, कर्म और वचन, तीनों। ये तीनों एक समय में यशोदा के लगे हुए हैं ना सेवा में। शरीर से तो मंथन कर रही है, मन से चिंतन कर रही है, और वाणी से कृष्ण की लीलाएं गा रही है। और फिर इतना सुंदर यशोदा के मंथन का वर्णन है, उसके रूप का वर्णन है, कि प्रभुपाद ने उसमें लिखा है जो वात्सल्य है, वात्सल्य प्रेम के भक्त है उसको यशोदा के इस रूप और सेवा को देख के उसके पीछे खड़ा होना चाहिए, तो इसको राग अनुगा वात्सल्य भक्ति कहते हैं, संबंध अनुगा भक्ति इसको कहते हैं, वहां प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है ऐसे। इसके बाद क्या हुआ, कृष्ण उठ के आया, क्योंकि वो तो पलंग पे सोया हुआ था, उठ के आया, माता जी के मंथन को रोक दिया, और रोका तो माता जी ने आंखें खोली तो कृष्ण अपने आप गोद में चढ़ गया, माता ने उठाया नहीं, और कृष्ण ऊपर चढ़ा तो माता ने अपना स्तनपान कराया, और कृष्ण दूध पी रहा था, माता देख रही थी, और इतनी देर में चूल्हे के ऊपर दूध उफरने लगा, तो कृष्ण को नीचे धर के मैया दूध को देखने चली गई, और कृष्ण कुपित हो गए, क्रोध आ गया कृष्ण को, किस बात, क्यों, खीर सागर में सोता था उसको छोड़ के इसका बेटा बना और 2 किलो दूध के लिए मुझे पटक के चली गई। देखो तो ये क्या मेरे साथ अन्याय है, देख इसको करके दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। और यशोदा की महिमा क्या है, अपने आनंद को अपने सुख को त्याग के जो वस्तुएं अपने प्रेम के जो जिससे हम प्रेम करते हैं उसकी सेवा में जो वस्तुएं लगती हैं उनका ध्यान देने के लिए चली गई। तो ये एक बार स्टेज के ऊपर कीर्तन हो रहा था, भक्त बहुत ज्यादा आनंद से कीर्तन कर रहे थे, लेकिन सामने कोई कीर्तन कर नहीं रहा था, सभी लोग ऐसे मुंह इधर उधर कर रहे थे, तो प्रभुपाद ने कहा अपने आनंद को परित्याग करके सबको कीर्तन में लगाओ। हमको कीर्तन में आनंद आ रहा है लेकिन हम आंखें बंद कर कीर्तन कर रहे हैं, सामने वाले जो बैठे हुए बातें कर रहे हैं, इतना सारा पंडाल प्रोग्राम है तो उनको कीर्तन में लगाना चाहिए ना। तो अपने सुख आनंद भगवान के सानिध्य के आनंद को छोड़कर भगवान की सेवा में लगने वाली चीज का ध्यान रखना, ये यशोदा के कृष्ण के प्रेम की का उत्तम उदाहरण है। इसलिए यशोदा की भक्ति बहुत ऊपर स्तर की भक्ति, क्योंकि वो दूध कृष्ण की सेवा में लगना था, लेकिन कृष्ण ने क्या किया, भांडा फोड़ दिया, मटका फोड़ दिया, और फोड़ने के बाद डर लगा और वहां से भागा और दूसरे कमरे में गया, और जो मक्खन लटक रहा था ऊपर उखल के ऊपर चढ़ा, और ये क्यों किया, ऐसे करने की जरूरत क्या थी, मां को ये दिखाना मैं इतना भूखा था, इतना भूखा था, तू मेरे को नीचे पटक के चली गई, तो मैं कल वाला तुम्हारा ये माखन है इसको खा के पेट भरूं और क्या करूं, भाई क्या जरूरत क्या थी, नहीं तो माखन दूसरे के पास जाने की, उधर ही बैठा रहे कहीं भाग जाए, माखन के उतार के। और यहां जहां श्लोक है वहां एक वचन में है, मरका बंदर एक वचन में है, और गोपियों के घर में जाते हैं तो वहां बंदर बहुवचन में है। तो कहते हैं नंद भवन में जब कोई बंदर आता है तो ये हनुमान जी ही आते हैं, एक वचन में आते हैं, ये भगवान की लीला का दर्शन करने आते हैं, और बाहर जब बंदर बंदरों को खिलाते हैं तो बहुत से बंदरों को खिलाते हैं, सारी बंदरों की पंचायत को ही खिलाते हैं, तो बंदरों को भी दे रहे थे तो कौवे आ गए उनको भी दे रहे थे उखल बेगुल। मैया ने पीछे से देखा, पहले तो मटका फूटा देखा तो हंसी कि बड़ा शरारती हो गया है, बहुत बड़ा शरारती हो गया है, मटका फोड़ दिया घर का, बच्चे घर के चीजों को बचाते हैं ये अभी से तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। फिर यशोदा को भय लगा, क्या भय लगा कि डर के मारे कहीं जंगल में चला गया तो भूखा है कुछ खाया नहीं है, जल्दी देख लूं पकड़ लूं, तो उनके चरणों के निशान जो जो आधा मंथा हुआ दही गिरा था ना उसके ऊपर श्री कृष्ण के चरणों के निशान पड़े थे, और चरणों के निशानों के ऊपर सनातन गोस्वामी पाद और टीका में लिखते हैं कि भगवान के चरणों में जो अंकुश का निशान है, जो वज्र का निशान है, जो ध्वजा का निशान है, जो कमल का निशान है, अब भगवान थोड़े बड़े हो गए थे वो निशान दिख रहे थे, वो निशान इतने सुंदर दिख रहे थे, तो वो गोपी उन निशानों से उस दूसरे कमरे में पीछे गई, लेकिन वहां देखा उखल के ऊपर खड़ा है तो बड़े दबे पांव जाने लगी कि कहीं मुझे देख ना ले, लेकिन वो हजार आंखें हैं, वो कोई पीछे मुड़ने के बगैर भी देख सकता है, सकल इंद्रियों से उसको पता लगता है। वो माता को ऐसे पीछे छड़ी लाके वो देखी, उखल से कूदा और भागा, उलू खलाम यशोदा भी भई, यशोदा के भय से उखल से कूद के भागा, तो उखल के ऊपर खड़ा था तब ना, उसके ऊपर से कूद के भागा और भागा बाहर, यशोदा पीछे छड़ी लेके भागी। अब सुखदेव महाराज वर्णन करते हुए कृष्ण के पक्ष में चले गए कि कृष्ण कैसे पकड़ा जाए, तो कहते यशोदा मैया एक तो उम्र की बड़ी है और ये उनका जो स्तनों का भार बहुत भारी है, निदम भारी है, वो दौड़ने का प्रयास तो कर रही है, नहीं पकड़े बच जाएगा कृष्ण शायद, तो ये यशोदा के भारी भरकम शरीर का वर्णन करके कहते इतनी तेजी से दौड़ी, इतनी तेजी से दौड़ी कि उसके बालों में लगे हुए मालती के फूल नीचे पीछे गिरने लगे। इसके ऊपर भी लिखा है कि भगवान के पीछे भाग रही थी, भाई भगवान के पीछे भागेंगे तो भगवान मिलेगा ही, लेकिन मालती के फूल क्यों गिर रहे थे? बोले वैसे मालती के फूल वेद के ऋचाओं का प्रतीक है, वेद के ऋचाएं कहती है जो भगवान के पीछे भागे उसके सर के ऊपर नहीं उसके चरणों के ऊपर हम रहेंगे तो अच्छे रहेंगे। ये इसके सर के ऊपर कैसे बैठे, इतना भगवान से प्रेम करती है उसके पीछे जा रही है। देखो भगवान के पीछे जाने वालों के वो फूल नीचे गिर रहे हैं, और पीछे से जाके पकड़ लिया गोपी ने, पकड़ लिया। इसके बाद कल वाले श्लोक में आपको सुनाएंगे, पकड़ लिया तो क्या किया, पकड़ लिया तो क्या किया, गोपी ने पहले क्या पूछा होगा, मटका फोड़ा नहीं, अरे एक जगह तो लिखा है मेरे बाप मटका फोड़ा मेरे बाप, बोला नहीं, फिर कैसे फूटा, पांव में इतनी मोटी चांदी का कड़ा है, तुम उठ के जल्दी गई, तुम्हारा कड़ा लग गया, फूट का मटका फूट गया। हाँ बंदरों को कौन मक्खन खिला रहा था जिसने बंदर बनाए, झूठ बोल रहे तो तुम बंदर हो, बोला मेरे को फिर पकड़ा क्यों, छोड़ जाऊं जंगल में, आज तेरे को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर रोने लगते हैं, आंखें मसलने लगते हैं, वो दूसरा श्लोक है। तो आज के श्लोक में हमने ईश्वर की परिभाषा, तीन अर्थ ईश्वर के कौन से, पहला अर्थ है महिमामय सर्वशक्तिमान, दूसरा है वंदना आत्मिक या प्रार्थना आत्मिक एकैक नाथम, तीसरा है भक्ति प्रक निज प्रभु, और फिर भगवान के स्वरूप लक्षण सच्चिदानंद विग्रह, और फिर उनके रूप लसत कुंडलम, फिर उनके धाम गोकुल ब्राजमानम अपने पार्षदों के साथ, उसके बाद इस लीला का। तो ये लीला का, ये पूरी लीला का आठवां और संभवतः नवां अध्याय, नवां और दसवां अध्याय एक तारीख से कुछ दिन बैठ के ये सत्संग करेंगे, कहां भगवान जाने जहां उन्होंने व्यवस्था किया, तो इस लीला का फिर एक एक श्लोक का रस आस्वादन करेंगे। आज मेरे ख्याल में ये दरवाजा खुलेगा, बाल्टियां आएंगी हरे कृष्णा।